चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सारी राह चलते चलते सारी राह चलते चलते।
आवाज की दुनिया के दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, केड़ो हाल आहे। मैं संगीता पमनानी आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे पॉडकास्ट पर। उम्मीद है आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। आज जो मैं कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ वो है सुरेंद्र मोहन पाठक जी की बीवी का हत्यारा। ये कहानी मैं 4 या 5 भागों में आपको समर्पित करूँगी। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी और आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको इस कहानी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये इस पुस्तक के बारे में है। कहा जाता है कि आस्था प्रमाणों पर आधारित विश्वास नहीं, अपितु अबाध समर्पण का नाम ही आस्था है। लेकिन रवि कुमार, पेशे से पुलिस इंस्पेक्टर, जिसे कि सबूतों को जांचने और हर बात पर शक करने की ट्रेनिंग हासिल थी, ऐसे अबाध समर्पण की भावना कहाँ से लाता वाला। तो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। बीवी का हत्यारा, पहला भाग। कोठरी में एकदम सन्नाटा था। उसकी तारीख सर्द चार दीवारी मुझे घेरे हुए थी। मैं शांत था। पहली बार मेरा अपने जहन से, अपनी कॉन्शियस से मुकम्मल अमन चैन का रिश्ता कायम हुआ था। मैंने सुना हुआ था कि उस माहौल का, उस घड़ी का इंसान पर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता था कि वो पागल हो जाता था और पूरी तरह से चीखने चिल्लाने लगता था। लेकिन मैं शांत था। मेरे लिए वो माहौल मेरी मनमांगी मुराद था। दूर कहीं घड़ियाल ने 7 बजाए। अब सिर्फ 1 घंटा बाकी था, सिर्फ 1 घंटा। अनायास मेरे जहन पर हालात का अक्स उभरने लगा जिन्होंने मुझे वहां पहुंचाया था। मेरे मानस पटल पर न्यूज रील सी चलने लगी। 1 साल पहले सप्ताह का पहला दिन, सर्दियों की रात। रात के 9 बजने को थे। मैं थाने में बैठा कॉफी की चुस्कियां ले रहा था। नाइट ड्यूटी अक्सर कॉफी और मुखियां मारने ही गुजरती थी। सब इंस्पेक्टर टोकस ने भीतर कदम रखा। उसकी शक्ल पर एक निगाह पड़ते ही मुझे लगा कि आज की रात कॉफी पीते और मक्खियां मारने नहीं गुजरने वाली थी। क्या हुआ, मैं बोला। कत्ल, उसने उत्तर दिया। किसका? एक लड़की का। कहाँ? सुंदरनगर, इमारत नंबर 8, फ्लैट नंबर 7, शॉपिंग सेंटर के पीछे। मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ। बाहर आकर हम दोनों मोटरसाइकिल पर सवार हो गए। हमारे निजामुद्दीन के थाने से सुंदरनगर कोई ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने मोटरसाइकिल बहुत तेज दौड़ाई। धीरे चलाओ, एकाएक टोकस बोला। मरने वाली तो मर गई, अब मोटरसाइकिल को हवाई जहाज बनाने का क्या फायदा? मैं मरने वाली की वजह से मोटरसाइकिल तेज नहीं चला रहा, मैं बोला। तो, उसने पूछा, देखता नहीं ठंड कितनी है? बस जल्दी मौका वारदात पर पहुंच जाएंगे। तेरा बाप कहा करता था, टोकस बोला, कि जल्दी का काम शैतान का होता है। मैं हंसा। सब इंस्पेक्टर टोकस, रमेश टोकस, मेरा मातहत था, मेरा जिगरी दोस्त था। हम दोनों में बहुत बनती थी। आजकल हम खुश थे कि हमारी ड्यूटी एक ही थाने में थी। वैसे भी, टोकस ने बताया, फ्लाइंग स्क्वाड की गाड़ी यहाँ पहले ही पहुंच चुकी है। हम पैदल भी वहां जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर मोटरसाइकिल की वजह से ठंड लग रही है तो चलो पैदल चलते हैं। मैंने कहा, पागल हुआ है? कहता है पैदल चलते हैं। तो फिर धीरे चलाओ, उसने कहा। मैंने रफ्तार तनिक घटाई। हम सुंदर नगर पहुंचे। एक हवलदार हमें इमारत के सामने खड़ा दिखाई दिया, जो हमारे वहां पहुंचते ही फौरन हमारी तरफ लपका। इमारत के आगे पड़ोसियों की काफी जमा भीड़ थी। हम जीप से बाहर निकले, हवलदार ने हमें सल्यूट मारा। हवलदार मुझे पहचाना हुआ लगा, लेकिन मैं उसका नाम याद नहीं कर पाया। क्या हुआ, मैंने पूछा, कौन मरा है? निशा नाम की कैबरी डांसर है साहब, हवलदार बोला, जो कि इस इमारत की तीसरी मंजिल के इकलौते फ्लैट में रहती थी। कैसे मरी? पत्थर के फूलदान के वार से। फूलदान भी खील खील हो गया, उसकी खोपड़ी भी। खबर किसने दी? उसके एजेंट ने। एजेंट ने? मैंने पूछा। जी हाँ, एसपी श्रीवास्तव नाम है उसका, हवलदार ने बताया। वह लड़की के साथ ही रहता है? उसने कहा नहीं। तो लड़की ने 7 बजे डांस के लिए डिफेंस कॉलोनी में स्थित गोल्ड डस्ट नामक रेस्टोरेंट में पहुंचना था। वह वहां पहुंची ही नहीं तो श्रीवास्तव उसकी तलाश में यहां पहुंच गया। यहां फोन नहीं है? है, लेकिन उसने फोन करने पर फोन किसी ने नहीं उठाया था। कौन उठाता? लड़की तो मरी पड़ी थी। लेकिन श्रीवास्तव ने समझा कि शायद फोन खराब था, इसलिए वह वहां खुद पहुंच गया था। यहां उसने लड़की को अपने बेडरूम में मरी हुई पाया। ऊपर कौन है इस वक्त? पुलिस का डॉक्टर और एक सब इंस्पेक्टर। चलो, मैंने कहा। हम तीसरी मंजिल पर पहुंचे। फ्लैट में दाखिल होते ही मैं उसकी सच धस से प्रभावित हुए बिना न रह सका। हर तरफ समृद्धि और ऐश्वर्य का बोलबाला था। कमाल है, मेरे मुंह से निकला। कैबरी डांसरी क्या 1-2 लाख रुपए महीना कमाती है? वो नहीं कमाती, टोकस बोला, लेकिन उनके कदरदान मेहरबान ऐसे भी होते हैं जो 1-2 लाख रुपया रोजाना कमाते हैं। मेरा बाप कहा करता था कि ऐश हमेशा उसी पैसे से होती है जो आपने खुद नहीं कमाया। कालीन में तो टखने तक मेरा पैर धंसा जा रहा है, मैं बोला। औरत भी तो ऐसी ही रही होगी, आदमी डूब जाए उसमें गोते लगा लगा के। सारे फ्लैट में एक बड़ी रहस्यपूर्ण, बड़ी मदभरी खुशबू व्याप्त थी। सारा माहौल ही ऐसा था कि आदमी पर खुमारी सी छाने लगे और वह दीन दुनिया भूलकर उस तिलस्मी माहौल में और शायद वैसी ही वहां की मालकिन में गर्क हो जाने की सोचने लगे। हमने बेडरूम में कदम रखा। बेडरूम बहुत विशाल था और उसमें इतना बड़ा पलंग लगा हुआ था कि उसमें बड़ी आराम से कम 6 आदमी तो सो सकते थे। लेकिन उस वक्त उस पर सिर्फ एक खून से सरोबर लाश मौजूद थी। दरवाजे के पास एक कुर्सी पर ढेर सा हुआ एक मोटा ताजा उम्रदराज आदमी बैठा था। वह सिर से गंजा था और उसके भारी भरकम क्लीन शेव्ड चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। यह एसपी श्रीवास्तव है, नीचे से आया हुआ हवलदार मेरे कान में फुसफुसाया। मैंने सहमति में सिर हिलाया। तभी डॉक्टर लाश के पास से हटा। सिर पर बहुत भीषण प्रहार पड़ा है। मेरे बिना पूछे ही वो बताने लगा। खोपड़ी तरबूज की तरफ फट गई है और भेजा बाहर बिखरा पड़ा है। बचने की कोई संभावना ही नहीं थी। मैंने गंभीरता से सिर हिलाया और पलंग की तरफ निगाह डाली। लड़की पर निगाह पड़ते ही खामखा मुझे अपनी बीवी की याद आ गई। लड़की पलंग पर अर्धनग्नावस्था में पड़ी थी। वह एक जीनी सी नाइटी पहनी हुई थी जिसमें से उसके सांचे में ढले शरीर का हर अंग साफ नुमाया हो रहा था। लगता था वह सोई पड़ी थी जबकि हत्यारे ने वहां कदम रखा था। उसकी आहट पाकर शायद उसकी नींद खुल गई होगी और उसने तकिए पर से सिर उठाया ही था कि हत्यारे ने पत्थर का वजनी फूलदान उठाकर उसके सिर पर दे मारा था। फूलदान के टुकड़े आसपास बिखरे पड़े थे। लगता था उसने एक ही वार में लड़की की जान ले ली थी। यह मेरी पुलिस की नौकरी की ही मेहरबानी थी कि उस विभत्स नज़ारे ने मुझे विचलित नहीं किया। अपनी पुलिस की नौकरी में मैं इंसानी बर्बरता और नृशंसता का शिकार हुई उनसे कई ज़्यादा हौलनाक लाशें देख चुका था। उस लड़की का तो केवल भेजा ही खोपड़ी से बाहर बिखरा हुआ था। मैंने एक बार एक नौजवान लड़की की ऐसी लाश हैंडल की थी जिसका चेहरा ब्लेड से काटा गया था, जिसकी दोनों छातियां काटकर ढक्कनों की तरह उसके पोलियों में लटकी हुई थी और उसके गुप्तांग में टेनिस के रैकेट का पूरा दस्ता घुसा हुआ था। लेकिन उस क्षण जिक्र के काबिल बात यह थी कि अपने सामने पड़ी निशा नामक कैबरे डांसर की लाश को देखकर मैं अपनी बीवी को याद कर रहा था। इत्तेफाक से मेरी बीवी का नाम भी निशा था। उसके भी वैसे ही लंबे स्याह काले बाल थे जैसे कि मैं उस कैबरे डांसर के देख रहा था। वैसा ही कदकाठ, वैसे ही पहाड़ की चोटियों की तरह उठी हुई मुंहजोर छातियाँ, वैसे ही पतली कमर, वैसे ही भारी कूल्हे, वैसे ही लंबी टांगें और सुडोल जांघें। कोई फर्क था तो यह कि वो कैबरे डांसर मेरी 27 साल बीवी से उम्र में कुछ छोटी लगती थी और मेरी बीवी का रंग उससे गोरे रंग से भी ज़्यादा गोरा था। एक फर्क और था, निशा नामक कैबरे डांसर मेरे सामने पड़ी थी लेकिन निशा नामक मेरी बीवी मेरे घर पर सही सलामत मौजूद थी और मेरे लौटने का इंतज़ार कर रही थी। क्या गारंटी थी, मैंने अपने आप से सवाल किया। मैंने अपने सिर को झटका देकर यह अप्रिय ख्याल अपने जहन से निकाला और डॉक्टर से सवाल किया, मरे हुए कितना वक्त हुआ? सही टाइम तो पोस्टमार्टम के बाद ही बताया जा सकता है, डॉक्टर ने बोला। अभी तो मैं अंदाज़ा ही बता सकता हूँ। अंदाज़ा ही बताइए, मैंने पूछा। मेरा अंदाज़ा है कि इसकी मौत 5 और 6 बजे के बीच किसी वक्त हुई है। इस वक्त, मैंने अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली, 9:45 बजने वाले हैं। तुम्हारी घड़ी, टोकस धीरे से बोला, 13 मिनट आगे है। आजकल मेरी घड़ी में कोई नुक्स आ गया था जिसकी वजह से वो कभी आगे तो कभी पीछे हो जाती थी, कई बार मुतवातर ठीक भी नहीं चलती थी। घड़ी कीमती थी लेकिन पुरानी थी, इसके लिए आजकल घपला कर रही थी। यानी कि, मैं बोला, कत्ल हुए 3.5-4 घंटे हो चुके हैं। हाँ, डॉक्टर ने बोला, एक ही बार हुआ है, तत्काल मृत्यु हो गई है। डॉक्टर के इशारे पर लाश को, उस सांचे में ढले जिस्म को जो मुझे अपनी बीवी की याद दिला रहा था, एक चादर से ढक दिया गया। मैं फिलहाल चलता हूँ, डॉक्टर बोला। फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट अभी यहाँ नहीं पहुँचे लेकिन पहुँचने ही वाले होंगे। लाश यहाँ से उठवाई जाने के बाद मुझे खबर कर देना। मैंने सहमति में सिर हिलाया। डॉक्टर वहाँ से विदा हो गया। मैं श्रीवास्तव की तरफ आकर्षित हुआ। मैंने उसे बाहर चलने का इशारा किया। बड़ी मेहनत से उसने अपना भारी भरकम शरीर कुर्सी में से निकाला और उठकर बाहर ड्राइंग रूम में आ गया। आपका नाम श्रीवास्तव है, मैंने बोला। हाँ, वो बदहवास भाव से बोला, शांति प्रसाद श्रीवास्तव। पुलिस को फोन आपने किया था, उसने कहा। हाँ, और यूं बोला जैसे कि ख्वाब में बड़बड़ा रहा हो, वो मेरी बेटी के समान थी। लेकिन बेटी थी नहीं, टोकस बोला। हाँ, थी तो नहीं, वो ऐसे कातर भाव से बोला कि मुझे लगा कि वो अभी रो देगा। लड़की की मौत ने उसे काफ़ी सदमा पहुंचाया लगता था, या शायद वो सिर्फ ऐसे जाहिर कर रहा था। आप ज़रा हौसला रखिए, मैं तनिक कड़े स्वर में बोला, और अपने आप को काबू में रखने की कोशिश कीजिए। जो होना था वो हो गया, आप कोई कुछ नहीं कर सकता है इसमें। अलबत्ता, टोकस बोला, आप लड़की के हत्यारे की तलाश में हमारी मदद ज़रूर कर सकते हैं। आप पुराने वाकिफदार थे लड़की के, मैंने पूछा। वह अवसादपूर्ण स्वर में बोला, बहुत मुद्दत से जानता था मैं रामेश्वरी को। रामेश्वरी, लड़की का नाम तो निशा बताया गया था। निशा उसका प्रोफेशनल नाम था, कैबरे डांसर्स अपने असली नाम से अपना धंधा नहीं करती थी। आई सी, तो रामेश्वरी उर्फ निशा को आप बहुत मुद्दत से जानते थे। उत्तर देने से पहले उसने जोर से थूक निकली और एक सुपकी ली। उस थिएट्रिकल इफेक्ट का मैं पूरा नावाकिफ था। अपनी पुलिस की नौकरी में वैसी सुपकी भरते मैंने ऐसे आदमी को भी देखा था जिसका इकलौता बेटा ट्रक की चपेट में आकर मर गया था, और ऐसे आदमी को भी देखा था जो अपनी बीवी पर मिट्टी का तेल डालकर और उसे माचिस दिखाकर हटा था। यह सुबकी किसी की बेगुनाही का सबूत तो क्या, किसी की बेगुनाही की तरफ इशारा तक नहीं कर सकती थी। रामेश्वरी, सुबकी से घुटे स्वर में श्रीवास्तव बोला, निशा इस वक्त 25 साल की थी। मैं इसे इसकी 15 साल की उम्र से जानता था, तब यह स्कूल में पढ़ती थी। मेरा तब भी यही धंधा था जो आज है। क्या, कैबरे डांसर सप्लाई करना? कैबरे डांसर्स, सिंगर्स, म्यूजिशियंस, कॉमेडियंस, मिमिक्री आर्टिस्ट, एंटरटेनमेंट से ताल्लुक रखने वाले सभी कलाकार। लड़की की सारी बुकिंग्स आपके माध्यम से ही होती थी? जी हाँ। आजकल वह गोल्ड डस्ट में प्रोग्राम देती थी? जी हाँ, आज 7 बजे वह वहाँ पहुँचने वाली थी। उसका प्रोग्राम 7 बजे से होता था? नहीं, प्रोग्राम तो 8 बजे से होता था, लेकिन पहले वह मेरे साथ डिनर करने वाली थी। आई सी। वह पहुँची नहीं तो मुझे फिक्र हो गई। यूँ खामखा कभी लेट होती तो नहीं थी? मैंने फ़ोन किया तो जवाब नहीं मिला, इसके लिए मैं खुद यहाँ पहुँच गया। फ्लैट का मेन डोर आपको खुला मिला था? नहीं, वह तनिक हिचकिचाया, दरवाज़ा तो बंद था। तो फिर आप कैसे दाखिल हुए? मेरे पास, वह फिर हिचकिचाया, फ्लैट की चाबी है। आपके पास? मैं उसे घूरता हुआ बोला, इस फ्लैट के मुख्य द्वार की चाबी है? वो बोला हाँ। ओह, टोकस एकाएक बीच में बोल पड़ा, तो लड़की के साथ आपके ऐसे ताल्लुकात थे? कैसे ताल्लुकात थे? आप क्या खाका खींचकर समझाना होगा? हाँ, खाका खींचकर समझाना होगा। रखेल थी क्या वो आपकी? श्रीवास्तव का चेहरा कानों तक लाल हो गया। मुझे यूं लगा जैसे वो एकाएक टोकस पर झपट पड़ने वाला हो। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। मैंने कहा है, वो दांत किटकिटाता हुआ बोला कि वो मेरी बेटी समान थी। क्यों नहीं? टोकस के स्वर में व्यंग्य का स्पष्ट पुट था। क्यों नहीं, जरूर होगी। श्रीवास्तव ने कहर भरी निगाहों से टोकस की तरफ देखा। मेरा बाप कहा करता था कि पराई बेटी से ऐसा रिश्ता वही उम्रदराज आदमी जोड़ता है जो इस रिश्तेदारी को अपनी बदनीयती पर पर्दे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता हो। बेटी होने में और बेटी के सम्मान होने में स्याह और सफेद जैसा फर्क होता है। श्रीवास्तव ने बेचैनी से पहलू बदला। तभी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और फोटोग्राफर वहां पहुंच गए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, तब तक के लिए इस कहानी का सस्पेंस बने रहना चाहिए और आपको मेरा इंतजार करना चाहिए। मैं जल्दी ही हाजिर होंगी एक बार फिर आप सबके सामने इसका दूसरा भाग लेकर। तब तक इंतजार करिए और दुआओं में याद रखिए, चलते चलते
चलते चलते चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सारी राह चलते।